रूपम तस्याग्रजोरितनिर्मातुमुष्टवाते राधाकुन्दं गिरिवर्महोदादिकामाभवासं प्राप्तो यस्य श्रीगुरुमुक्तम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनमो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रभृजन्तमनुपेतमुपेतुकं द्वैपायनो विरहकातव्या पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भिनेति तं सर्वभूतदयं त्वैवास्ति त्वैवास्ति इति जय राधे तन्मयमा नारद जी प्रयाग से कृष्ण के सबसे बड़े कृपा पात्र कौन हैं, इसको चलाकी से साथ फैलाने के लिए वहां के जमींदार नरेश वो ठाकुर जी का बाल गोपाल मूर्ति लेकर और पूजा कर रहा था, कहा कि आपसे बढ़कर के कोई मैंने कि हम नहीं, तो फिर दक्षिण भारत में बड़े राजा के पास में गए, उन्होंने कहा कि मैंने उससे बड़े इंद्र है, इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी, इस प्रकार से वो कहां गए, पांडवों के पास में, और फिर वहां से उद्धव के संबंध में सुना, उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उनसे बढ़कर के और कोई प्रिय नहीं है, सुन करके और झट वो द्वारकापुरी पहुंचे, वीणा लेकर गायन करते हुए उद्धव उद्धव कहते हुए वहां पर महाराज परीक्षित कर रहे हैं, आई कैन नॉट स्पीक इन 2-3-4 लैंग्वेज, आई हैव स्पोकन सो मच इन इंग्लिश इन वेस्टर्न कंट्री, सो वन ऑफ यू कैन ट्रांसलेट, अदरवाइज I will be more tired. But here all are Western devotees, knowing English, all top people. And those who are Hindi speaking, they have no interest to hear at all. So, Narada Rishi declare in whole world that who is the most superior, most dear to Krishna. And that is why he began his journey from Prayag and then South India to Indra, Brahma, Prahlad, Hanuman, and then Pandav, and then he came to Pandav, and they told, oh, we are not so fortunate. He died in the and they glorified him. Tatsutva, Mahaprem, Rasaveshi in a Jambita, Mahavishnu, Hiro, Tina Hatta, Vasu, Vishnu, Parikshit ji ne kaha ji Mataji, Uddhav ka mahatma sun karke, इसके मुझसे युधिष्ठिर महाराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव कुंती और द्रौपदी सबने आज हमारे जैसा दुर्भागा कोई नहीं, हम लोग सबसे दुर्भागा है। तो उद्धव जी बड़े भगवान की कृपा पात्र, उस सबका पंचम अध्याय में उसका वर्णन किया हुआ। उद्धव ये कहेंगे माता जी, उद्धव जी का महात्मा सुन करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय नारद जी प्रेम रुषे आवेश में मग्न हो गए और सब कुछ भूल गए, देह और दैनिक बीणा बजाना भूल गए, बीणा हाथ में रही और वे द्वारकापुरी में वहां पर पहुंचे। तथा धारावती बासात अभस्त पुनर्वर्त मना प्रभु प्रसाद आदेशांत प्रवेश आश्चर्यवाणी। नारद जी प्रेम में सब कुछ भूल गए, मात्र क्या बिना भी नहीं बजा सके और उद्धव जी की जय जयकार बोलते हुए चलने लगे। द्वारकापुरी कैसी है, समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी बीथियां हैं, रास्ता मार्ग बड़े बड़े उद्यान हैं और 16,000 रानियों के लिए 16,000 राजमहल बनाए हैं और एक एक समल ऐसे सुंदर हैं कि साधारण आदमी उसमें जा नहीं सकता, भूल जाएगा। विशेष करके रुक्मिणी जी का घर जहाँ है, यहाँ पर कृष्ण रहते हैं, वहां पर जाना बहुत कठिन है और नारद जी प्रेम रस में पागल हो गए। तभी वे प्राय जाते आते रहते थे द्वारकापुरी में और रुक्मिणी के भवन में कृष्ण से मिलने के लिए जाते आते रहते थे। कृष्ण दर्शन लालसा, यद्यपि उनको अभिशाप है दक्ष प्रजापति का कि वे एक जगह घोर दुग्ध काल से अधिक नहीं रह सकते, किंतु कैसे रह गए वहां, कैसे जाते थे? कृष्ण दर्शन लालता वो सांप से मुक्त था, बताई टोल यू और यू अंडरस्टूड समथिंग और यू शुड टेल के बोलते एनीवन स्पीकिंग हो Who is it? Eh? He is speaking then. You are under hearing? You are all hearing? He is speaking? Then? After you should speak. What I do?
So, it's describing, Prince of Knowledge describing to his mother. I'm now really trying to find what the best recipient of the message to Krishna. He went from Indra to Lord Brahma. From Lord Brahma, he went to the Pandavas. So the Pandavas told Onara, we are the real recipients of the message to Krishna. The real recipient of the message to Krishna is Uddhava. So when Onara heard this, he became so much ecstatic and mad, even he forgot to play his vina. He went running to Dwarkapuri. So Dwarkapuri is situated in the middle of the ocean. An ordinary person cannot enter there, very hard to enter. But Narada Muni became so mad, he ended into the house of Rukmini, a very, very astonishing opulence was there. So normally because of the curse of Prajapati Daksha, Narada could not stay in one place for more than a short period of time. But because he had so much desire to have darshan of Krishna, he became free from that curse and he went inside to see Krishna.
Daksha Prajapati, उसके बहुत से लड़के हुए और सब लड़कों को बालकों को भेजा नारद जी के यहाँ पढ़ाने के लिए, जिनको शाम दाम दंड भेद इत्यादि पढ़ाइए और पुत्र उत्पन्न इत्यादि संतति उत्पन्न करने की भी शिक्षा दें, जैसे हमारी वंश परंपरा चले। किंतु नारद जी ने उनको असली शिक्षा पढ़ाई, जैसे उनको भक्ति हृदय में हुई और संसार आसार है ऐसा समझ करके सब लड़कों को भक्ति ऐसी शिक्षा दी, वो घर छोड़ करके चले गए भजन करने के। दक्ष प्रजापति आए, बोले हमारे लड़के कहाँ गए? तो वो तो यहाँ से पढ़ लिख करके चले गए। कहाँ गए ये तो नहीं जानते, वृंदावन में चलेगी, कहाँ चले गए? वो बहुत बिगड़ा, अजय इस बार अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त और कोई पढ़ाने वाला नहीं, उनका ऐसी शिक्षा मत देना जो घर बार छोड़ करके चले गए। ठीक है, फिर भेजा तो उन्होंने फिर इस बार ऐसा पढ़ाया जो फिर वो लोग भक्ति मार्ग में चले गए और घर में कोई नहीं लौटे। दक्ष प्रजापति बहुत बिगड़ा और क्रोध से साफ दिया, ये तुम कहीं भी दो क्षण नहीं टिक सकते संसार में, केवल रह सकते हो गोदोहन का काल बस एक जगह रह सकते, अधिक किसी को शिक्षा नहीं दोगे जैसे वो घर छोड़ करके चला गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले जी आज से मैं इससे मुक्त हो गया, अब सर्वत्र जाऊंगा भगवान की शिक्षा। तो इस प्रकार से करने लगे, किंतु जब उनकी इच्छा होती कि कृष्ण का दर्शन करूंगा तो द्वारकापुरी में चले जाते। द्वारकापुरी में अभिशाप नहीं जाता क्योंकि कृष्ण के भुजाओं से रक्षित है। इस लोक का है तो जगत में कोई भी अभिशाप है वो जगत में नहीं अप्राकृत जगत है, इसलिए उसका साप वहां पर नहीं लागू होता था, इसलिए स्थिर रह करके जब तक इच्छा होती कृष्ण का दर्शन करते, उनके लीलाओं का भी दर्शन करते, सांप वहां नहीं जाता। इसलिए नारद जी वहां पर पहुंचे, पहले का अभ्यास था, बीच बीच में जाते थे, इसलिए प्रेम में उन्मत्त होने पर भी वो अपने आप उनका पैर चलता गया और रुक्मिणी के वन में पहुंचे, जो दूसरों के लिए पहुंचना बहुत भारी मुश्किल था।
So he produced many, many sons. He sent them to perform austerities. At that time, they met with Sita. He sent them to perform austerities to create more progeny. At that time, by good fortune, they met with Sri Narad Muni. Narad Muni gave them such instructions that brought the end of their heart, and they never returned home to sannyas and perform bhajan. So who knows where they went, maybe to Vrindavan. So Daksha is very angry. So he told Narada, okay, don't give those type of instructions. So he had another lot of sons. He sent them also to perform austerity. Narada Muni caught them also. He gave them instructions on Bhakti Tattva. So they also never returned home. So Prajapati Daksha became very angry. He gave a curse to Narada Muni. You can never stay in one place more than 2 seconds. Because for everywhere you go, you give such instructions to destroy and break family household situation. Therefore, never stay in one place. So now I really became very happy. Oh, now I can go everywhere and reach Bhagavad Shiksha.
Right out, many of them.
Shiksha and pastimes. So, now I really, sometimes he has desire to have darshan with Sri Krishna, so that he goes to Dwarkapuri. Because Dwarkapuri is protected by Krishna himself, because it's the appropriate transcendental dham, therefore no curse can work there. So, Narayani, he went inside, which is very hard for an ordinary person to do. He is so much ecstatic and desirous to see Krishna. Automatically, his legs will be bent into the palace of Rukmini.
Narayani, Bhumak, Vapi, Khalati, पतति क्वापि तिष्ठत अचेष्टा काप्य उत्कंपा भजति लुटति क्वापि रोदिति की वार्ता। नारद जी प्रेम में विवश होकर के और उद्धव की सेवाओं का चिंतन करते 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 कभी गिर पड़ते हैं जमीन में, कभी लौटते हैं पड़ते हैं, कभी चेष्टा रहते एकदम चुपचाप स्थिर हो जाते हैं। क्या तात्पर्य? ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है, कृष्ण की लीलाओं का और उद्धव के साथ उनके संबंधों का चिंतन करते करते अश्वशात्विक भाव उनके आ गए, इसलिए प्रेम में विवश होकर के कभी गिर पड़ते हैं, कभी जमीन पर लौटते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह से कभी लौटते पलटते हैं वो नथिंग, कभी जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और कभी बहुत जोर से रोते हैं प्लूट स्वर से, और कभी कीर्तन करने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी युगपत समस्त प्रेम विकार एक साथ में उनको उत्पन्न हो जाते।
फोन कर दिए पाठिए
ये चलेगा नहीं,
ये चला के दिए।
भगवान कृष्ण জয় রাধা মাধব। कृष्ण कहाँ रहते हैं? रुक्मिणी के घर में। तो वो रास्ता भूले, तात्पर्य क्या? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवत भक्त लोग प्रेम में उन्मत्त होने पर भी भक्ति के जो मार्ग है उसे विचलित नहीं, भक्ति के मार्ग पर अवस्थित रहा, भक्ति से चित्त नहीं हो सकता। सात्विक विचार होगा, किंतु भक्ति के विरुद्ध कोई आचरण करके ये नहीं होगा, हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं सत्यता विचार करने पर भी यह समझा जा सकता है कि प्रेम में वशीभूत होने पर भी भगवान मार्ग विस्तृत, भगवान मार्ग से विचलित नहीं होती है। क्या था? भक्ति विचलित, भक्ति से विचलित नहीं होती। परंतु उस समय भी लौकिक रीति के या अग्नों के विस्तृत मुताबिक, जैसे भूत किसी को पकड़ ले ऐसा हो तो जाएंगे, किंतु तो कभी भी भक्ति से चूक नहीं। वो लोग उन्मादग्रस्त देखेंगे, किंतु उन्मादग्रस्त नहीं, वो प्रेम के विकार है, सात्विक विकार है। सत्व से उत्पन्न होता है इसलिए सात्व। सत्व क्या? शुद्ध सत्व। इसलिए दूसरे लोग कहते हैं कुछ आविष्ट हो गए, कुछ ऐसा हो गया वैसा, किंतु वो नहीं, वो ठीक रहा। जैसे एक विषय को समझो, जैसे कृष्ण प्रेम में गोपियां या कोई भी भक्त मुक्षित हो गया, समुचित हो गया माने क्या? बाहर और भीतर सब सुन गया ना? नहीं, मुनि लोग ऐसा हो जाता है, मुनि लोग समाधि में सब कुछ भूल जाते हैं बाहर और भीतर। किंतु संत लोग तो भगवान के भक्त हैं या गोपियां या गोप, हाँ में मूर्छित हो जाएंगे तो उस समय कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो देखेंगे, ये हो रही, उस मूर्छा में भी परम आनंद है, इसलिए आनंद तुम्हारे मूर्छित हो जाते हैं और संसार का सब कुछ विस्मित हो जाते हैं। संसारिक लोग समझते हैं जैसे हम मूर्छित हो जाते हैं वैसे कोई ज्ञान नहीं। जैसे किसी को कोई ऑपरेशन करना हो तो उसे सुझा देते हैं कोई क्लोरोफॉर्म में आ गया, तो बाहर भीतर सब स्मृति उसकी नष्ट हो जाती। कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं, ऊपर से ऐसा दिखता है और भीतर से क्या, उस समय कृष्ण की लीलाओं का चिंतन और मालूम होता है कि स्पष्ट रूप में कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करते, ऐसे उनको लोग समझा बाहर के लोग समझते होंगे ये भूत इनको पकड़ ली। और भक्त लोग जब भी देखेंगे ना अब इसको समझेंगे उद्धव जी और लोग समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। महापुरुषों के भावों को कनिष्ठ नहीं समझ सकते, ये असंभव। पूरा बोलो।
So, any types of Pakistani God could be seen in the body of Sri Narayana. Sometimes he became stunned, sometimes he would roll on the ground, sometimes he was shouting and crying very loudly. So what is this? This is the symptom of Prem Bhakti. And all eight could be seen on the body of Sri Narayana. Even though now it became so much like mad, this is not madness, this is under the influence of Sukhasattva. So even though he forgot everything about his body, he never forgot which way is the path to Krishna's room. This is Sri Sanatana Swami giving commentary. The devotee may forget everything in this world, but he never forgets the path of bhakti. So sometimes you see that the gopis or any high-class Vaishnava, sometimes they fall on the ground and become unconscious. But their unconsciousness is not like us, or like the unconsciousness or munis or other types of so-called sadhus. When the munis go into samadhi, they forget everything, this world, and also they forget themselves. But when the gopis or the Vaishnavas go into samadhi, they deeply remember all the name, form, qualities, and pastimes of Krishna. So Krishna Adhikari cannot understand like that. They think that when a Vaishnava goes into samadhi, like when they go into an operation, and the doctor gives some anesthetic, the time that person forgets everything, but the Vaishnava is not like that. Even though they appear to be unconscious, they never forget their relationship with Krishna.
Hey, मनमाती मातरी जानिंग संसावधान तराभव तीर्थां प्राप्यन्ति मां तद्धैर्यं संयुतं इदं स्मरणं। हे मेरी मैया, अब सावधानी से सुनो, अब तक जो सुना और उससे अधिक सावधानी से सुनो। मैं यदि कहीं मोहित हो जाऊं तो हमको भी धैर्य बंधा, और तुम भी धैर्य से सुनो। अब यहाँ से प्रेम गोपियों के और गोपों के ब्रजवासियों का प्रेम का वर्णन होगा, ये तात्पर्य। इसलिए अब धैर्य धारण करो। यदि मैं धैर्य चुप हो जाऊं या बोलते बोलते मूर्छित हो जाऊं, भावना अविष्ट होकर, तो हमको धैर्य बंधाना, और फिर धैर्य होने के बाद हे माता, उस दिन जिस दिन नरक वहां पर पहुंचे भूताभिष्ट होकर के, तो रुक्मिणी के घर के में जब गए तो देखा रुक्मिणी के घर के दरवाजे पर, द्वार देश पर, तो श्रीमान उद्धव जी कुछ उदास मुख से बैठे हुए। उद्धव जी कहाँ बैठे थे? रुक्मिणी के घर में नहीं बैठे, रुक्मिणी के पलंग पर कृष्ण थे। उनको छोड़ करके ये दहली के पास में, दरवाजे के पास में बैठे हुए थे। अंत प्रकोष्ठ में भीतर में कृष्ण सो रहे हैं। तीन ऊंट आया है, काफी दिन चढ़ गया और कृष्ण सो रहे हैं, ऐसा ध्यान करके वो लोग बड़े दुखी होकर के ईश्वर जी बैठे हैं और पास ही में श्री बलदेव जी, देवी मैया, रोहिणी, रुक्मिणी, सप्तभामा और सब महिषियां, ज्ञानवंती इत्यादि, ये सब बैठी हुई हैं बड़ी उदास मन से। आज कृष्ण को सोने में इतनी देर, उठने में देरी हो गई, क्यों ऐसा हुआ? और भगवत प्रवृत्ति हारिणी कंस की माँ पद्मा, पद्मा कौन सी? भगवत प्रवृत्ति हारिणी, भगवान की भक्ति की प्रवृत्ति को भी नष्ट करने वाली कंस की माता पद्मावती और दूसरी दूसरी दासियां सभी चुपचाप उदास मन से रहती, वो भी उदास मन से सभी। इसलिए अपनी मैया को कहा, अब देखो ये विरह आएगा, बहुत सावधानी से सुनना। देखो उस दिन श्रीमान उद्धव जी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज इतनी देर हो गई, सूरज कहां ऊपर चला गया, दिन हो गए 9-10 बज गए और कृष्ण क्यों सोए हुए हैं? इसलिए मालूम होता है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है। अभी उस चीज को अभी बतला नहीं रहे कि हम विस्तार से, क्योंकि अभी इसमें बोलना उचित नहीं, क्योंकि नारद है ना उद्धव, सभी लोग और दिन में प्रमत्त हो जाएंगे, इसलिए बोलना उचित नहीं समझा। हमारे और आपके जैसे नहीं है जो कि उनकी पीड़ा की बातों को सुन करके हम लोग हंसे, उनका अनुभूति होगी। इसलिए अभी ही उस चीज को खोल करके कह देना, अथवा मोह की आशंका से के ना भी किसी कारण से सोए हुए, कारण नहीं बदला है, कारण किंतु वह कुछ क्या है पहले पीछे बदला नहीं। इसलिए कुछ न क्यों ऐसा हो गया आज अभी तक से सुन रहे हैं। ऐसा सुन करके उद्धव जी भीतर से निकल कर बाहर में बैठे, अंतपुर रुक्मिणी के राजभवन से बैठ निकल करके बाहर और बलदेव प्रभृति देवती की, बलदेव प्रभु, रुक्मिणी, सप्तभामा, जामवंती, रोहिणी मैया इत्यादि सब उनके द्वार देश पर ही बैठे हैं, भीतर में कोई नहीं है, भीतर में पलंग पर सो रहे हैं अकेले। पद्मावती सा प्रसिद्ध पद्मावती, कौन सी पद्मावती है? प्रसिद्ध बोलने का उद्देश्य है उनके पति उग्रसेन थे, किंतु कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं था, वो द्रुमदैत्य का पुत्र था। कंस की माता बड़ी सुंदर थी, सुंदरी थी, तो उग्रसेन थी, उग्रसेन पत्नी बड़ी सुंदरी थी बचपन में, तो वो अपने पीहर में आई और द्रुमदैत्य ने उन्हें देखा और उनका चरित्र भ्रष्ट किया, उसी से कंस राक्षस होकर के जन्मा, इसलिए उग्रसेन का पुत्र नहीं था कंस, इसने अपने पिताजी को कैद किया और भगवान का विरोध किया, पांडवों का विरोध किया, सब लोगों का विरोध किया, इसलिए वो कहेंगे प्रसिद्ध है। इसलिए वो प्रसिद्ध कलुष की मैया भी वहां पर थी, वो उदास थी, क्यों? उसका कारण पीछे बतलाएगा, वो भगवान की लीलाओं का बाहरी स्वरूप समझ करके कुछ अपने भाव से उसको बतलाती थी। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं तो गौ चराने के लिए, प्रिय होने के नाते, पुत्र होने के नाते नहीं। और गोपियां क्या करती हैं ये रुक्मिणी जी जानती हैं, रुक्मिणी मैया जानती, वो भीतर की भाव जानने वाले और ये बाहर की भाव। साधारण आदमी भक्ति के भावों को नहीं समझता, वो अपने जैसा ही दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। एक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति उत्तम अधिकार के भक्तों की बात को क्या समझेगा? या साधारण आदमी? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी की सभा में आ रहे और लड़के सब उनके ऊपर में धूल कंकड़ फेंक रहे हैं, स्त्रियां हंस रही है, ये पागल आ गए। और जब परीक्षित महाराज जी के सलाम में नारद इत्यादि सब उठ करके खड़े हो गए, वो उन लोगों ने क्या देखा? कोई महाभागवत आए? देवतानों की भी शक्ति नहीं है कि वैष्णव को पहचान सके, तो और लोगों की, इसलिए मत समझो कि वैष्णव को हम ठीक पहचान गए, सब गुरु को पहचान गए, ऐसा मत समझो।
Separation route and also that better friend. So don't become unconscious, feel very, very presently. So that time, Srinath Muni, he went into the room of Sri Rukmini Devi. That time, what did he see? A very astonishing thing. Many, many people were there, including Uddhava, Devaki, Rohini Ma, Rukmini, Satyabhama, and Padma Bharati. None were inside the room, only Krishna was inside the room sleeping. This was about 10 o'clock in the morning, very, very light. So all because of humility, were not inside the room of Radha on the doorstep. So all were very sad, especially Uddhav, because Uddhav was thinking there must be something wrong with Krishna, some sickness or some unhappiness. Otherwise, he's sleeping so late. So when Narad Muni saw the situation, he did not speak because he could understand that to speak at this time of separation was very inappropriate. So, but Mahavati was also there. Shriti, wife of Ugrasen and Kamsa's mother. So here, Sri Sanatana Goswami is describing Padmavati as Bhagavad Priti Harini, one who steals away one's tendency to serve Sri Krishna. Because Parvati, when she was young, she was very, very beautiful, very attractive. So when she was very mature, one morning she went for a walk in her own garden and she was seen by the Rakshas Drumila. So Drumila became attracted to her and brought her chastity. So therefore, Kamsa is not really the son of Ugrasen, he's actually the son of the demon, Drumila. That's why he was a demon who was always against Krishna and against Krishna's devotees, the Pandavas, everyone. So, someone like Padmavati, she cannot really understand the pastimes of Krishna. She has her own external understanding. But someone like Rukmini, like Rohini Ma, she can understand the real conception of Krishna's pastimes. For example, a mature person, he tends to think everyone is pretty much like me. So therefore, a Kanishtha Vikari cannot understand the real behavior or speech of high class of Vaishnavas or the pastimes of Krishna. For example, when Sri Sukadeva Goswami, he approached the bank of the river where Parikshit Maharaj was sitting, that time Sri Sukadeva Goswami was surrounded by many, many young boys and ladies. those children were throwing stones and bits of bark on the head of Srisukila Goswami because they could not understand in the exalted position. But when Sri Pritchard Maharaj and all the other monies saw, oh, Srisukila Goswami is here, they really stood up and offered him so much respect, understanding, oh, now I know he's come. So we should not jump to the conclusion that, oh, I understand Vaishnava Sahib is going to do that. This is not a good idea.
Naraki इस प्रकार से अष्ट सात्विक भाव में विभोर हैं और वहां पर उन्हीं सप्तभामा जी इत्यादि हैं वो ऐसी हैं कि नहीं है। इस अवस्था में पहुंच करके जमीन में लोट पोट रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी पृथ्वी पर लोटने लग जाते हैं, ये भक्ति की कौन सी स्थिति है? कौन सी स्थिति? नारद जी कौन स्थिति में है? तो ये प्रेम से स्थिति में पहुंच गए हैं और प्रेम से भी अधिक यहाँ पर स्नेह और प्रणय इत्यादि इसमें कुछ लक्षित हो रहे हैं। इन्हें साधारण स्थिति नहीं है किंतु अपने से उद्धव को श्रेष्ठ मान रहे हैं, है ना? अपने से उद्धव सबको श्रेष्ठ मान रहे हैं और अपने को दीन ही मान रहे हैं, यही भक्ति का लक्षण है। इसलिए अन्नाभिलाषिता संयम के श्लोक है, उसमें कृष्णानुशीलनम कृष्णानुशीलनम उत्तम भक्ति, ये उसकी स्थिति में कुछ और आगे अग्रसर होकर, ये साधारण नहीं है। उसकी भूताश्च ते सर्वा वर्तमान सभी सत्यनारद प्राप्त अच्छन अत्यंता अपूर्व थे। उस समय नारद जी की अपूर्व चेष्टा को देखा, जो कभी गिर रहे हैं पढ़ रहे हैं, कभी हाथ काट कर रहे हैं, देख करके सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सब लोग उनको उनके पास में आकर के अवसर दिया उनको और उस समय में वे लोग उठ करके नारद जी को और स्थिर कराए, जरा स्थिर होइए, कृष्ण सो रहे हैं, उनकी निद्रा भंग ना हो जाए, ये भी एक कारण। और इसलिए उठ करके उनके अश्रु को मार्जन किया, पानी लेकर के उनके मुंह को धोया, नारद जी को स्थिर किया, अब वो कुछ सुस्थिर हुए। फिर वो बोले, हे ब्राह्मण, आप तो कृष्ण के बड़े कृपा पात्र हैं, नारद को कह रहे हैं भगवान के बड़े कृपा पात्र, आज हम लोग आपकी ऐसी अपूर्व चेष्टाओं को क्यों कैसे देख रहे हैं, क्या कारण क्या है, आपको ये क्या हो गया, भूत जैसा आप लोट पोट रहे हैं और हम अशु पुलोट ये सब हो रहे, क्यों हो रहा है, कारण क्या है? आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा, थोड़ा सा स्थिर तो होइए और बतलाइए, तो उसके लिए हम लोग कुछ उपचार करेंगे, उचित मार्ग करेंगे। मैया सुनो, आगे नारद की आंखें अश्रुओं से भरी हुई है, क्यों? उद्धव जी की कृष्ण की सेवा को स्मरण करके यदि कोई भी थोड़ी सी अपने गुरु भगवान की सेवा कोई करता है, यदि शुद्ध भक्त होता है तो भाव में विभोर हो जाता है। सेवक वह है जो दूसरों को अपनी गुरु सेवा में तनिक भी सेवा दे करके समझता है कि इसने बहुत सेवा की, हम तो कुछ करते हैं, या कोई भगवान का सेवक हो, जैसे पुलिंद का न्याय गोवर्धन में भगवान की कौन सी सेवा की, हिरण्य क्या सेवा की कृष्ण की, और गोपियां क्या देख रहे हैं उनको, आप प्रणय नेत्र से कृष्ण की बंसी को सुन करके उनका रूप देख करके ये मुक्त हो गए। ये मूर्ख है क्या वो धन्यास को पूर्ण भगवता हो आप ये मूर्ख आप कृष्ण से पढ़े की भीख मांग रहे हैं और उसका पति पीछे पीछे उसकी ये पुलिंद का न्याय कृष्ण के चरणों में लगे हुए महावर को देख करके प्रेम से मग्न होकर के अपने चारों शरीर में देखती है हिमान राज कृष्ण को पाती है और हम लोग ऐसी दुर्भाग्य जाते नहीं कर सकते तो यही होता है शेष भक्तों का ये दर्शन यदि वो देखता है कि उनके आराध्य का उन्होंने कुछ देखा तो सेवा करते वो भाव में घुर यही हो रही है तो परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं आंखों में अश्रु के भरे हुए हैं और वो नमस्कार करने लगे किनको जो बैठे बैठे हुए हैं उद्धव जी को देख करके उन सबको और बड़े कंपित कलेवर से पुटित होकर के गदगद स्वर से वे कहने लगे नारद जी ने कहा नारद जी बोले यदि आप लोग चाहते हैं हमको जीवित रखना और हमको शांत करना चाहते हैं तो महाभागवत उद्धव जी का दर्शन हमें करा दीजिए भगवान का ऐसा कृपा पात्र हमने कहीं नहीं सुना इसलिए उनका दर्शन करा दें अथवा आप लोग कृपा करें जो उद्धव जी की चरण की धूरी को मैं स्पर्श करके अपने शरीर में लगाऊं उसी में हमारी आत्मा शांत हो जाएगी हमने आज तक क्या प्राचीन या अर्वाचीन नवीन जितने भी प्रभु के अनुग्रह के पात्र हैं भगवान का ऐसा अनुग्रह किसी ने नहीं पाया जहां जहां वो गए उन सबको अब ले लो कोई प्रयाग से लेकर के अब तक जिनके पास में गए हैं पांडव इत्यादि से प्रभु का अनुग्रह ये प्राप्त इसीलिए भगवान ने स्वयं इनको अपनी विभूति कहा है भक्तों में मैं उद्धव ये विभूति बतला है और भी श्रीमद् भागवत में बतलाया है आगे बतला है
So just imagine Nara's position, it's not an ordinary position. You know, we can think he's across the stage of Ram and some snake, Pranayamalan, Anurag, present him to some degree. But what is he thinking? He's thinking, I'm the lowest. But Uddhav is the real recipient of Krishna's mercy. Seeing Nara's condition, everyone became astonished. Were present there at the doorstep, offered respect to Sinara Muni. And they calmed him down and made him peaceful and washed his face with water. They thought, now it should be calm, otherwise he will break Krishna's sleep. So, Narad said, oh, Uddhav, you are really the recipient of the mercy of Krishna. And Uddhav was asking, oh, Narad, what happened to you? How you become mad? That time, white tears were coming to the eye of Narad. That time, Sinara Muni was remembering, oh, Uddhav has done so much seva to Krishna. So this is the position of a real Vaishnava seva. Even if someone has done even a little bit of service to Gurudev, to Vaishnava, to Bhagavan, then a real Vaishnava will think, oh, they have done so much service, and they'll become ecstatic. Just like the gopis. The gopis are highest of all. When they see the peacocks, they think, oh, the peacocks have done so much service to Krishna. Just look how much love they have for him. When they see him, they become stunned by great sadhus.
हमारे जीवन का उद्देश्य ऐसी भक्ति को लाभ करना है, इसलिए चेष्टा करो इसी जीवन में हम लोग इस स्थिति को प्राप्त करें। यदि प्राप्त भी नहीं करते हैं उस लाइन में तो आ जाए, अंततः श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से रुचि में आने की चेष्टा करो। रुचि में आने के बाद में अनिश्चितता भक्ति समाप्त होती है, नहीं तो होगा कि विवाह करके रहूं या क्या करूं, नारद जी जैसा रहूं। अरे प्रहलाद महाराज जी तो भक्त थे, वो भी तो शादी किया। अब व्यास जी ने क्या शादी नहीं किया तो हम भी करने में दोष हो जाएगा। फिर नारद जी, अरे नारद जी कौन कह रहा है, नारद जी ब्रह्मचारी है कि क्या है, वो बहुत नीचे। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य कम से अनिश्चितता भक्ति से निश्चितता भक्ति में आए। घर में रह करके पहले करूँ, बाद में करूँ, शादी करूँ कि न करूँ, अभी पुत्र घर में है और मैया पूरे हो रहे हैं, मैया भी और अब क्या करें। अभी इधर इच्छा रह रही है जो मठ बाद में करें, वो भी करें या वो करें, बड़ी क्रिटिकल स्थिति है। ये सब को छोड़ करके यदि भक्त नारद जी जैसा होना चाहते हो तो नारद जी जैसा बनो। 1000 गंधर्वियों के कितना करोड़ों गंधर्वियों के साथ में रहे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के अभिशाप से, किंतु स्पर्श नहीं कर सका ये काम और भोग। और फिर दूसरे जन्म में दासी पुत्र होकर के आए, तब शादीवादी कुछ नहीं किया और कैसे तपस्या की, भगवान का भजन किया, वैष्णव के संग में रहे, तब ऐसी भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए गृहस्थ में चले जाएंगे और बस भक्ति झट मिल जाएगी, पांडव जैसा बन जाएगा ऐसा मत समझो। इन्हें जीवन का आदर्श बना करके कम से कम तो तुम लोग ये इस भक्ति में अनिश्चितता से निश्चितता में आओ और उसे रुचि आ जाए। जिस दिन नाम में रुचि आएगी, सेवा में रुचि आएगी, अर्चन में रुचि आएगी, रसोई बनाने में ठाकुर जी की रुचि आएगी, गुरु जी की सेवा में रुचि आएगी, तुम्हारा जीवन सार्थक। बस आज ये
So this is our life's goal, to attain a bhakti just like the Lord of the house. So for this we have to work very hard. If we are now at the stage of anishtha bhakti, hands getting devotional service, then we have to endeavor very hard to come to the platform of anishtha bhakti and be steady. If we are the platform of anishtha bhakti, we have to work very hard to come to the stage of ruchi. So anishtha bhakti have many symptoms. For example, one may be thinking, oh, should I become brahmachari, manvasi, or sannyasi, or should I marry? Oh, Vyasadeva married, so what problem? The Pandava is also married. So if I marry, I can become like them through bhajan. But hang on the other hand, Narada, he never married. And so many of our Guru Vara, they never married. So what should I do? What should I do? Should I live in the mud? Should I take diksha? Or should I stay at home and do bhajan with my mother and father, my mother and father and brothers? So we should understand, if we want to become, if Prabhupada like Narad Muni, then we have to follow Narad Muni. Don't think, oh yes, the Pandav is also married, so I can also marry and I'll get bhakti like the Pandavas. We should not think like this. For example, look at Narad Nishtha. even though he was cursed by Babaji and became Gandharva, even though he was surrounded by thousands and thousands of asuras, they could not catch his mind, they could not disturb him. So even from there, when he was cursed to become the son of a maidservant, a Brahmin, even then, Naraguni, he never gave up his brother, he never married or anything. So we should try and follow like Naraguni, then we can hope for a kind of type of devotion like Naraguni.
Oh,
Damodar, Damodar.